आरव को सब कुछ याद आने के बाद जब वो आयु से मिला तो उसे अलग ही नजरों से देख रहा था, ठीक वैसे ही जैसे वो पहले देखा करता था। आरव का पुराना मोड ऑन हो चुका था, जिसके बाद उसे किसी का डर नहीं था। आरव ने आयु को बिना किसी डर के गले लगा लिया। वहां पर निर्वाण आ गया तो आयु ने उसे ये कहा कि आरव ने उसे जबरदस्ती गले लगाया था। आयु चाहती थी कि आरव उसकी बात पर हामी भरे, लेकिन आरव ने साफ मना कर दिया, जिसके बाद निर्वाण नाराज होकर वहां से चला गया। निर्वाण के जाते ही आयु ने गुस्से में आरव की तरफ देखकर कहा, तुम्हारी वजह से मेरी शादी टूटने की कगार पर आ गई है। अगर निर्वाण सर ने शादी से बैकआउट किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं आरव खुराना। ट्रस्ट मी, मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम मुझे ना छोड़ो। वैसे कौन सी मजबूरी के चलते तुम उससे शादी कर रही हो? तुम्हारी आंखों में उसके लिए फीलिंग्स तो किसी भी हाल में नजर नहीं आ रही हैं, आरव ने आयु की आंखों में देखते हुए कहा। आयु आरव से कुछ कदम दूर हो गई और फिर चिढ़कर बोली, तुम्हें इससे क्या कि मैं उससे प्यार की वजह से शादी करूं या किसी और वजह से? खुद को देखा है कभी? मेरी बहन से इसलिए शादी कर रहे हो क्योंकि तुम्हें प्रॉपर्टी चाहिए? हाँ, पता नहीं था कि मैं इतना बेवकूफ हो सकता हूँ। खैर, मुझे उस प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है और ना ही तुम्हारी बहन से। हाँ, कुछ याद नहीं था तो उससे शादी करने की जिद कर बैठा, आरव ने बेपरवाही से कहा। आयु को उसकी बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी तो वो सिर हिलाकर बोली, तुम अपनी जलेबी जैसी बातें अपने पास रखो, मैं जा रही हूँ। वैसे भी मुझे निर्वाण सर को मनाना है। आरव को वहीं छोड़कर आयु जल्दी से वहां से निकल गई। आरव उसे जाते हुए देख रहा था। उसने धीरे से बड़बड़ाकर कहा, सीरियसली, अपने होने वाले पति को सर कौन कहकर बुलाता है? जरूर करियर और मार्क्स के चक्कर में शादी कर रही है। तुम तो इस जन्म में मेरे जैसी निकली मिसेस खुराना। कोई बात नहीं, तुम मुझे हर तरह से पसंद हो, चाहे इस बार थोड़ी सेल्फिशी क्यों ना हो। आरव के चेहरे पर ईविल स्माइल थी। तभी आशी वहां पर आई। आशी ने भी आयु की तरह मल्टी कलर का लहंगा पहना हुआ था, जिसमें वॉयलेट कलर ज्यादा था। आयु का लुक जहां सिंपल था, वहीं आशी ने अपने लहंगे के साथ हैवी ज्वेलरी पहन रखी थी। आरव को देखते ही आशी के चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई। वो उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, हल्दी के बाद आप कहाँ गायब हो गए थे और अभी भी तैयार नहीं हुए? कुछ देर बाद में मेहंदी की रस्म चालू होने वाली है। आशी को लगा कि उसे देखने के बाद आरव उसे कॉम्प्लीमेंट देगा। वो मुस्कुराते हुए नीचे देख रही थी। तभी आरव रूट तरीके से बोला, मैं तैयार होने के लिए जा रहा हूँ। तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम भी रेडी हो, लेकिन डोंट यू थिंक तुमने कुछ ओवर ही पहन रखा है? आरव लास्ट बर्थ में डिजाइनर था तो वो आशी को उसी हिसाब से जज कर रहा था। आशी हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी कि तभी आरव बिना कुछ बोले वहां से चला गया। मुझे अचानक ऐसे क्यों लगा कि उनकी बात करने का टोन चेंज हो गया है? इतना रूडली बात ये नहीं करते थे। उन्होंने प्रॉपर्टी की बात सीधे सीधे पापा के सामने रखी थी, पर फिर भी थोड़े सॉफ्टली बात कर रहे थे। अब ऐसे लग रहा है जैसे बात करके मुझ पर एहसान कर रहे हैं। कहीं आयु सही तो नहीं कह रही थी? आशी ने घबराते हुए कहा। आरव के बर्ताव ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। आशी को ज्यादा देर सोचने का टाइम नहीं मिला क्योंकि वहां शालू आ गई थी और वो उसे नीचे गार्डन एरिया में ले गई, जहां मेहंदी की रस्म होनी थी और साथ में छोटा मोटा संगीत का प्रोग्राम भी रखा गया था। दूसरी तरफ आयु आरव के पास से जाने के बाद निर्वाण के पास पहुंची। निर्वाण भी तैयार हो चुका था और उसने भी आयु से मैच करता हुआ मल्टी कलर का डिजाइनर इंडो वेस्टर्न ड्रेस पहन रखा था। आयु निर्वाण के पास जाते हुए बोली, प्लीज मेरा यकीन कीजिए सर, वो उसने मुझे जबरदस्ती हक किया था। आप जानते हो मैं हक पसंद हुई नहीं। हम दोनों भी एक दूसरे के करीब नहीं आए हैं, ठीक से हक भी नहीं किया है। निर्वाण ने आयु की तरफ देखकर कहा, तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। मैं तुम पर डाउट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारा चेहरा देखा था जब तुमने उसे गले लगा रखा था। तुम्हारी आंखें बंद थी आयु, एंड ऐसे लग रहा था जैसे उसकी करीबी तुम्हें सुकून दे रही हो। यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसके पास आने पर मुझे अजीब सा फील क्यों होता है। जरूर कोई हिप्नोटाइज करने की ट्रिक जानता है वो, आयु ने मन ही मन बड़बड़ाकर कहा। उसे चुप देखकर निर्वाण ने कहा, अच्छा ठीक है, अब इस बारे में ज्यादा मत सोचो, कई बार हो जाता है। मैं बुरा नहीं मान रहा हूँ, ना ही मैं इतना नैरो माइंडेड हूँ कि तुम्हें किसी को हक करते देखकर तुम पर शक करूँ। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि अगर अभी भी तुम्हारे मन में कोई दूसरी फीलिंग है या तुम अभी शादी नहीं करना चाहती तो प्लीज मना कर दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शादी के बाद मैं डिवोर्स जैसी चीज नहीं चाहता। आयु ने उसकी बात पर हामी भरी। वो इस टॉपिक पर और बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए आयु ने बात को बदलते हुए कहा, अच्छा ठीक है, अब इस बारे में और बात नहीं करते हैं, नीचे रस्में शुरू हो रही हैं, हमें वहां जाना है। आयु ने निर्वाण का हाथ पकड़ा और उसे नीचे ले गई। आशी और आरव नीचे साथ में बैठे थे और उन दोनों के हाथों पर मेहंदी लग रही थी। आरव ने जब आयु को निर्वाण का हाथ पकड़े हुए देखा तो उसने आईज रोल करके कहा, उफ यार, इसका हर जन्म में ये मेल बेस्ट फ्रेंड होना जरूरी है क्या? पहले वाला तो मेरा भाई था तो मुझे उस पर यकीन था, पर इस पर कैसे ट्रस्ट करूं जब देखो इसके साथ चिपकी रहती है। आयु और निर्वाण वहां आकर बैठे ही थे कि तभी मिस्टर ओबेरॉय उनके पास आए और उन्होंने कहा, अच्छा मेरी लॉयर से बात हो गई है, कल शाम को शादी है तो सुबह ही तुम चारों कोर्ट जाओगे और मैरिज रजिस्ट्रेशन पेपर पर साइन कर दोगे। ट्रेडिशनल तरीके से शादी करना भी सही है, लेकिन ये भी ठीक रहता है, पहले रजिस्टर्ड मैरिज कर लो उसके बाद में फेरे ले लेना। यही वजह थी कि मिस्टर ओबेरॉय ने आरफ को उन चारों के डॉक्यूमेंट दिए थे। सबको इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो वहीं आरफ के फेस पर इविल स्माइल थी। मिस्टर ओबेरॉय ने उन सबको बताया नहीं, लेकिन ये आइडिया आरफ का ही था और ये उसका बैकअप प्लान था जो उसने पहले ही बना रखा था।